ओके, उसके बाद वील टॉक अबाउट द बोनी चेंजेस एंड सिस्टमिक स्क्लेरोसिस। डर्मेटोमायोसाइटिस में हमने डिस्कस किया था कि डर्मेटोमायोसाइटिस के अंदर कोई भी बोनी चेंजेस नहीं होती हैं। इसी तरह से हम डर्मेटोमायोसाइटिस को और सिस्टमिक स्क्लेरोसिस को आपस में डिफ्रेंशिएट कर सकते हैं ऑन द एक्सरे। सो क्या बोनी चेंजेस हो सकते हैं सिस्टमिक स्क्लेरोसिस में? दीज इंक्लूड ऑस्टियोपोरोसिस, ऑस्टियोपाइक्यूलोसिस, पेंसिलिंग ऑफ द डिजिट्स जिसको हम पेंसिल इन अ कप डिफॉर्मिटी कह सकते हैं, एवैस्क्यूलर नेक्रोसिस और एक्रोऑस्टियोलाइसिस या बोन रिसॉर्प्शन, टर्मिनल टफ्ट रिसॉर्प्शन। ऑल ऑफ दीज आर द फाइंडिंग्स, द बोनी फाइंडिंग्स ऑन द एक्सरे इन सिस्टमिक स्क्लेरोसिस। देन जी आई टी इन्वॉल्वमेंट इज़ वेरी कॉमन इन सिस्टमिक स्क्लेरोसिस, in which we can see that the findings can be esophageal reflux, dysphagia or stricture formation. All three can occur, although ये एक दूसरे के बिल्कुल अपोजिट है, लेकिन किसी पेशेंट के अंदर वो ऑल्दो गर्ड जो है वो बहुत ही यूनिवर्सल फाइंडिंग है, लेकिन जैसे जैसे स्क्लेरोसिस इंक्रीज़ होती जाती है तो पेशेंट के अंदर डिस्फेजिया और स्ट्रिक्चर फॉर्मेशन के फीचर्स हमारे पास ज़्यादा आने लगते हैं। Then we have hiatus hernia, the telangiectasia is present on the mucosa of the small intestine, on the gut or in the stomach, may lead to bleeding. Intestinal obstruction may occur, malabsorption may occur because due to the abnormal peristalsis, usually there is stagnation of the food contents inside the gut leading to bacterial overgrowth which causes malabsorption. And hence ultimately the patient will be complaining of steatorrhea, bulky stools which are foul smelling. So these are due to the GI involvement in systemic sclerosis. Besides this, there will be paralytic ileus, dilated atonic colon, or duodenal strictures and ulcers. Then what is scleroderma renal crisis? I'm going to discuss all of the systemic features one by one, which can be asked in the form of these questions. So because we know that internal viscera involvement occurs in the systemic sclerosis, just mein gut involvement, lungs, cardiac involvement, renal involvement. तो इनमें जो renal involvement होती है इसकी जो prognosis वो सबसे बुरी है. If renal crisis occur in a patient, it can lead to the development of malignant hypertension and rapidly progressive renal failure. The patient will be complaining of uncontrolled hypertension. इसी वजह से हिस्ट्री में हम पेशेंट से पूछते हैं कि कभी आपको एमरजेंसी में ब्लड प्रेशर बढ़ जाने की वजह से तो अस्पताल नहीं आना पड़ा. तो जो है ये बहुत इम्पॉर्टेंट हिस्ट्री की क्वेश्चन है, और इसी वजह से एग्जामिनेशन फॉलोअप में अपनी इन्वेस्टिगेशंस में हमने इस कॉम्प्लिकेशन को ज़रूर याद रखना है. इट अकर्स इन 5 to 10% ऑफ द स्क्लेरोडर्मा पेशेंट्स. द रिस्क फैक्टर्स फॉर द रीनल क्राइसिस इंक्लूड रैपिडली प्रोग्रेसिव डिफ्यूज स्किन थिकनिंग, क्योंकि इसका जो स्पेसिफिक एंटीबॉडी है एंटी आर एन ए पॉलीमरेज 3 एंटीबॉडी, इट इज़ प्रेजेंट इन द डिफ्यूज टाइप, नॉट इन द लोकलाइज टाइप. So the risk factors are the rapidly progressive diffuse skin thickening and high dose of corticosteroids used. So that is why whenever we are using steroids in scleroderma patients, we should use it very carefully in order to provide in order to prevent the development of this crisis. Then, as I mentioned, this the symptoms will be high blood pressure and ultimately leading to the complications, that is the development of encephalopathy presenting as headache, seizures, loss of consciousness or altered state of consciousness. They can be vision disturbance due to retinopathy, left ventricular hypertrophy, cramps, decreased urine output, hematuria, proteinuria and edema of the feet. So these will be the renal complications in patient of scleroderma.